अंश, कौन अंश? तब अचानक आस्था की आंखें गुस्से से सुलग गई और उसका गला कड़वाहट से भर गया। उसने गंभीर आवाज में सबको बताया, अरमान जी को वो वायरस किसी और ने नहीं बल्कि राजवीर जिंदल ने दिया है। अब आगे, अब जैसे ही आस्था ने पूरी नफरत के साथ राजवीर का नाम लिया, आस्था के मुंह से ये नाम सुनकर सबकी जान हलक में आ गई। एक पल में उन सबके होश उड़ गए, वो सभी सुन रह गए और उन सबके दिलों में अविश्वास की लहर दौड़ पड़ी। वहीं ध्रुव और आहान की तो टांगे तो राजवीर का नाम सुनकर ही कंपकंपाने लगी थी, क्योंकि राजवीर कितना ज्यादा खतरनाक इंसान था वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वायरस के पीछे राजवीर का हाथ होगा। सब लोग पूरी तरह से सकते में आ गए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो एक दूसरे को क्या जवाब दे। वहीं आहान घबराकर अटकती हुई आवाज में आस्था से पूछता है, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? वो इतने खतरनाक इंसान, वो साइको राजवीर, वो जिंदा कैसे बच सकता है? उसे तो अविनाश भैया और अबीर सिंह राठौर ने खुद मौत के घाट उतारा था। उसका सवाल सुनते ही आस्था ने आहान को आगे बोलने से रोक दिया और हवा में अपना हाथ बढ़ाकर आहान से पूछा, क्या आप में से किसी ने उसे मरते हुए देखा था? उस वक्त अरमान जी ने उसे उसकी बीवी की लाश के साथ जलाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी ने भी उस वक्त वहां जाकर ये देखना जरूरी नहीं समझा कि वो मरा है या नहीं। वो उस वक्त मरा नहीं था, वैसे भी 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर वो पैदा हुआ होगा। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पति को वो खतरनाक वायरस राजवीर नहीं दिया है, और उस वायरस का एंटीडोट बनाना शायद नामुमकिन हो, लेकिन प्रोफेसर साहब ने हमें राजवीर की फितरत के बारे में अच्छी तरह से समझाया है कि अगर उसने ऐसा कोई वायरस बनाया है तो उसने उसका एंटीडोट भी बनाया होगा। तो हमारा लक्ष्य साफ है, अगर हमें मिस्टर सिंघानिया को ठीक करना है तो हमें राजवीर के ठिकाने का पता खोजना होगा और उसके घर से, उसके नाक के नीचे से एंटीडोट को लेकर आना होगा। अब जैसे ही आस्था ने ये सुझाव दिया तो ये सुनकर सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन सबका दिल डर और आश्चर्य से भर गया। वहीं रौनक, राधिका और रश्मि तीनों ही राजवीर के बारे में जानकर काफी हद तक घबरा गई थी। उन तीनों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उन्होंने डरते हुए राजवीर के बारे में सोचा, क्योंकि उन सबने राजवीर का वो खतरनाक रूप शादी में देखा था, और जब उन्हें ये पता चला कि राजवीर कितनी बेरहमी से लोगों की जान लिया करता था और स्पेशली वो अपनी पत्नी को किस तरह से ट्रीट किया करता था, ये सारी बातें याद आते ही वो सब घबराने लगी थी। वहीं रौनक थोड़ा ज्यादा पैनिक करने लगी थी, जिसे आस्था ने तुरंत संभाल लिया। आस्था उसके पास गई, उसका हाथ थाम कर बोली, शांत हो जाओ रौनक, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन सभी के लिए बहुत बड़ी है, और हम ये बात भूल कर भी दादाजी, नानी माँ और बाकी सबको नहीं बता सकते हैं। अब हमें इस सिचुएशन से खुद ही निपटना होगा। राजवीर ने बहुत सोच समझ कर ये चाल चली है, अब हमें उसकी चाल को पूरी तरह से नाकामयाब करना होगा। कहीं ना कहीं आस्था की आवाज में राजवीर के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। वहीं ध्रुव जल्द ही वंशिका के पास चला आया और वो उसका हाथ थाम कर खड़ा हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि इस वक्त उसकी बीवी के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक बार फिर वंशिका का अतीत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। सभी के दिमाग में एक बाद एक सवाल आने लगे, लेकिन फिलहाल रश्मि ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगाकर कहा, आस्था पता नहीं भगवान जी अब हमारे कितने इम्तिहान लेंगे, लेकिन एक बात तो मुझे साफ साफ समझ में आ चुकी है कि ये साजिश हमारे परिवार को इनडायरेक्टली टारगेट करने के लिए रची गई है। किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पति के दिल और दिमाग से तुम्हारी यादें मिटाई हैं ताकि तुम पूरी तरह से कमजोर हो जाओ, इसीलिए उसने अरमान को एक बार फिर से हार्टलेस बना दिया है। अब देखना यह है कि अरमान का रूखापन तुम कब तक बर्दाश्त कर सकती हो, और शायद तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ने जानबूझकर ये चाल चली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है आस्था कि इस बार तुम्हें न केवल उस साइको राजवीर से लड़ना है, बल्कि इस बार तुम्हें खुद अपने पति से भी लड़ना है, क्योंकि तुम्हारा पति किस कदर राजवीर का दीवाना है ये बात किसी से छुपी नहीं रही है। अब जैसे ही रश्मि ने सच्चाई से अवगत कराया तो सभी लोग ये सोचकर चिंतित हो गए थे। तभी सुमित आगे बढ़ा, फिर आस्था और रश्मि को देखकर बोला, फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर अरमान को जरा सी भी भनक लग गई तो वो किसी भी पल यहाँ आ धमकेगा, और फिर अगर उसने हम सबको एक साथ इस तरह से तहखाने में देख लिया तो उसके सवालों के जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आस्था सुमित की वार्निंग सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एकदम कॉन्फिडेंटली बोली, आप फिक्र मत कीजिए सुमित भैया, मैं उन्हें उलझा कर आई हूँ। आस्था की बात सुनकर सबके चेहरे के हाव भाव एकदम से कन्फ्यूज्ड हो गए और सब एक दूसरे को कंधे उचकाते हुए नासमझी में देखने लगे। तभी आहान ने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा, भाभी आप अरमान भाई कहाँ उलझा कर आई हैं, कैसे मतलब? तब आस्था इस बात का जवाब देते हुए बोली, मैं अंश को उन्हें देकर आई हूँ। आहान और ध्रुव आस्था की ये बात सुनते ही पूरी तरह से सोच में पड़ गए और उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वे चलते हुए आस्था के सामने आकर खड़े हो गए और चिंतित होकर बोले, ये आप क्या कह रही हैं? आप अंश को अरमान भाई को देकर आई हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान भाई और बच्चों का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे भाई पुराने वाले अरमान भाई नहीं है, वो अब बदल चुके हैं। उनकी आवाज में फिक्र महसूस करते ही आस्था उन्हें शांत कराते हुए तिरछा सा मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन जब नानी माँ ने मुझे बताया कि आज अंश के रोने की वजह से अरमान जी को फर्क पड़ रहा था, तब मैंने इस बात का फायदा उठाया है और कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अंश को उन्हीं के पास सौंप दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है वो भले ही हम सब के लिए कितने ही ज्यादा कठोर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अंश के लिए सख्त नहीं होंगे। फिलहाल हमें एक और बात आप सबको बतानी है, और वैसे भी 3 दिन बाद जन्माष्टमी महोत्सव है, तो हम सबको मिलकर उसकी भी तैयारी करनी होगी। सभी लड़कियां ये सुनकर अगले ही पल एक्साइटेड हो गईं और सभी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो एक दूसरे को एक्साइटेड होकर देखने लगी। फिलहाल वे सभी लड़कियां पहले से प्लान कर चुकी थीं कि इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार सब मिलकर रघुवंशी मेंशन में ही मनाएंगी, क्योंकि यहाँ सिंघानिया मेंशन में इस तरह से अरमान के सामने कोई भी त्यौहार मनाना इम्पॉसिबल था। जिस तरह से रक्षाबंधन वाले दिन ड्रामा हुआ था, वैसा ड्रामा वे लोग फिर से फेस नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब जन्माष्टमी का त्यौहार सीधी तरीके से रघुवंशी मेंशन में ही सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसी सोच के साथ सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर खुश होकर देखने लगी। वहीं रौनक बेपरवाही से बोली, अच्छा ही है, कम से कम मेरे बच्चे को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट तो मिलेगा, क्योंकि जब से अरमान की यादें गई थी वहां का माहौल काफी ज्यादा इमोशनल और इरिटेटिंग हो चुका था, और किसी भी लड़की को या किसी को भी इस तरह के सख्त माहौल में रहने की आदत नहीं थी। वो लोग अपना हर एक दिन बहुत ही अच्छी तरीके से और आजादी से जिया करते थे, लेकिन अब तो जैसे वहां सब कुछ ठहर सा गया था। फिलहाल जल्दी ही सावधानी के साथ सभी तहखाने से वापस अपने अपने कमरे जाने लगते हैं, और उन सबका लास्ट डिसीजन यही था कि सबसे पहले वे राजवीर के ठिकाने का पता लगाएंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि उसके ठिकाने से एंटीडोट कैसे चुराई जाए, क्योंकि अगर राजवीर ने अरमान को वायरस दिया है तो वो खुलकर भी सामने जरूर आएगा, और आस्था को बस उसके चालाक कदमों का इंतजार था। फिलहाल अब सब लोग जैसे तैसे अपने अपने कमरों में चोरी चुपके जाने लगे।
तभी आहान ने तुरंत आगे बढ़कर रौनक को थाम लिया और हल्की नाराजगी से बोला, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, इतनी तेजी क्यों चल रही हो? हाँ, तब रौनक ने घबराई आवाज में जवाब दिया, लेकिन हमें आगे पीछे जाना चाहिए, अगर अरमान भाई ने हमें एक साथ देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। उसकी आवाज में चिंता सुनकर आहान हल्के से मुस्कराया और रौनक से बोला, तुम उनकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो मेरे भाई हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्हें किस तरह से कवर अप करना है, तो तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना बोलकर वो जल्दी ही रौनक का हाथ थामकर उसे संभालते हुए अपने कमरे में ले जाने लगा। वहीं आस्था सब लोगों को सच बताने के बाद अब सीधा अरमान के कमरे के बाहर आ पहुंची और लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी थी। फिर वो सोचने लगी कि वो अरमान के कमरे जाए या नहीं। भले ही आस्था अरमान के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन वो अंश के बिना तो नहीं सो सकती थी। फिलहाल उसने जल्दी ही अरमान के रूम का दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन जब अरमान ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आस्था थोड़ी परेशान हो गई। उसने जैसे दरवाजे पर हल्का धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। अब कमरे में यहाँ वहाँ झांककर आस्था को कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। उसे लगा जैसे कि कहीं आहान की बात सच ना हो गई हो। फिलहाल उसने कांपती हुई आवाज में अरमान को पुकारा, मिस्टर सिंघानिया, आप कहाँ हैं और कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अंश, अंश, अंश बेटा, मम्मा आ गई है, जल्दी बाहर आओ। ये बोलते हुए आस्था जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। वहीं कमरे से आस्था को किसी और की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब ये खामोशी आस्था की दिल की धड़कनों को पूरी तरह से बढ़ा रही थी। एक डर उसके कांच जैसे दिल को सताने लगा था। तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ढूंढा और जल्दी से लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसने देखा बड़े ही आराम से राजाओं की तरह अरमान पैर पर पैर रखकर आराम से अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ है और इस वक्त सिर्फ आस्था को ही एकटक घूर रहा है। अरमान को इस तरह बेपरवाह अंदाज में देखकर आस्था थोड़ा सा घबरा गई। जल्दी से उसने अपने चारों तरफ यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई ये देखने के लिए कि उसका बेटा अंश कहाँ है, लेकिन उसे उसका बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो आस्था पूरी तरह डर गई और कांपती हुई आवाज में अरमान से पूछने लगी, मिस्टर सिंघानिया, अंश कहाँ है? जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया, वैसे ही अरमान तुरंत उठ खड़ा हुआ और आस्था के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहने लगा, अंश, कौन अंश? अरमान के मुंह से ये शब्द सुनते ही आस्था को झटका सा लगा। उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसके सीने में गुस्सा भरक उठा और अगले ही पल वो अरमान की ओर सर्द नजरों से देखती हुई बोली, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। प्लीज बताइए, हमारा बेटा कहाँ है? बोलिए ना, जवाब दीजिए हमें। ये कहते हुए आस्था की आंखें भर आईं और आवाज कांपने लगी। फिलहाल अरमान को आस्था की हालत देखकर बहुत मजा आने लगा। आस्था आसपास छुपकर यहाँ वहाँ तलाशने लगी, लेकिन उसे उसका बच्चा अंश कहीं भी दिखाई नहीं दिया और अचानक ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अरमान उसके रोते हुए चेहरे को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगा और वो आस्था का मजाक उड़ाते हुए एकदम से बोला, यू नो वॉट, औरतों का सबसे इमोशनल हथियार होते हैं ये आंसू, लेकिन ये आंसू अरमान सिंघानिया के सामने बहाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अरमान सिंघानिया इन आंसुओं से नहीं पिघलने वाला है। अब आस्था को अरमान की इरिटेटिंग बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो दांत भींचते हुए अरमान पर चिल्लाई, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी फालतू की बकवास बंद कीजिए और मुझे बताइए मेरा बेटा कहाँ है। वहीं आस्था के चेहरे पर डर और घबराहट देखकर अरमान को और भी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि जब आस्था से उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो उसने अरमान को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद जब भी आस्था उससे बातें करती तो वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया करती है, और उसका ये एटीट्यूड भला अरमान से कैसे बर्दाश्त करता।